ओम शांति। जो हमारी 16 कलाओं की सीरीज चल रही है, उसमें जो सेकंड जो हम कला चल रही है, आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला, उसमें जो ऑलरेडी 3 सेशन हो चुके हैं, आज का चौथा सेशन है अंडर थिंकिंग। अंडर थिंकिंग जिसे कह सकते हैं कि कम सोचना। तो लास्ट टॉपिक हमने सुना था ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, और ये है कम सोचना। तो लोग कम क्यों सोचते हैं? जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपना जो कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ है, तुम मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। तो वो तो ठीक है, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन बाहर वाले जो है, जो ज्ञान में नहीं है, उनके लिए हम क्या कहेंगे? वो लोग कम क्यों सोचते हैं? उनकी सोच चलती नहीं है ना। एक्चुअली देखा जाए तो बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं कि हमें कुछ सोचना चाहिए। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम हमारी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम किसी की बुद्धि ही उतनी लिमिटेड है कि उससे कुछ सोचने का मार्जिन ही नहीं है, या मतलब सोच ही नहीं सकता कि इस बात पे भी मुझे कुछ सोचना चाहिए। ऑलरेडी उनका माइंड सेट है, जैसे घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को आगे कई बार देखा होगा, आंखों के साइड में पट्टी बांधी जाती है, वो एक ही डायरेक्शन में देखे, यहाँ वहाँ न देखे। तो वैसे होता है कि हमारी आंखों पर भी क्या किसी ने पट्टी बांध के रखी है क्या, कि हम केवल एक ही डायरेक्शन में देखें, दूसरी जगह देखें ही नहीं? हम हमारी बुद्धि का जो विवेक का उपयोग ही नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए होते हैं, जिस वजह से भी जो है हम सोचते हैं कि पिछले बार ऐसा हो गया था, इसलिए हम उसी बात को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करके सोचते हैं कि अगर हम दोबारा इसी बात को सोचें तो हो सकता है आगे कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इससे अच्छा है कि सोचो ही नहीं, जो दूसरे बोल रहे हैं बस उसी को मानते जाओ, सत्वचन महाराज करके उसे फॉलो करो। हमारे इसमें देखते हैं कि लाइफ इसमें, खासकर भारतीय संस्कृति में, एक्चुअली विदेश में भी बहुत सारी जगह ऐसी कई बातें हैं कि लोग उससे मानते हैं, बिलीव करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप जा रहे हैं और बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो 2 मिनट रुक जाओ। तो एक्चुअली उसे होता क्या है? होता तो किसी को पता नहीं क्या होता है, लेकिन सब लोग करते हैं इसलिए हम भी मानते हैं। आप कहीं किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे, उसी समय किसी ने छींक दिया अगर, तो बोलते कि नहीं रुक जाओ थोड़ा देर, कुछ ना कुछ अशुभ हो गए थे। तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, विदेश में भी कई जगह पे अलग अलग बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, और लोग उसे मानते भी है। हमको लगता है कि विदेश वाले माना ज़्यादा एडवांस है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह लोग मानते भी है। ऐसे बीच में ऐसे अमेरिका का सैटेलाइट एक बार फेल हो गया था, तो इंडिया वालों को पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उसमें किसी ने कॉमेंट्स भेजा था कि आपने नींबू मिर्ची बांधा था क्या उस पर। तो बहुत सारी ऐसे सिस्टम होती है जो हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम क्यों करते हैं। मैं थोड़े समय पहले, जैसे फॉरेनर सीजन में विदेश के भाई बहने भी आते, तो एक सिंगापुर का भाई आया था, तो उसने थोड़े मतलब क्लास के बाद में कमलेश भाई और मैं था, तो हमें कुछ प्रश्न पूछ रहा था कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो बोलने लगा कि जो हम बैठते हैं तो शॉल रख के बैठते हैं पैर पे, इसका क्या नियम है, ये क्यों रख के बैठते हैं? हमने कहा भाई ऐसे ही रख के बैठते हैं, उसका कोई नियम नहीं है कोई, कि कोई कंपलसरी किसी ने नियम बनाया है इस तरह बैठना ही है, ऐसा नहीं है। किसी को बैठना उस तरह बैठते हैं, ऐसे ठंडी लगती है पैरों पे इसलिए डालकर बैठते हैं, बाकी कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है। हमने कहानी सुनी होगी ना, जो बिल्ली की कहानी थी, कि जो महाराज जो है बिल्ली पालते हैं और बाद में जो है बिल्ली उनको तंग करने लगती है, तो क्या करें? तो जब वो हवन वगैरह पूजा पाठ करते हैं तो बिल्ली को एक टोकरे में बांधकर टोकरा ऊपर लटका देते हैं, तो महाराज तो ओम शांति हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वही सिस्टम आगे कंटिन्यू चलती है, वो बिल्ली भी शरीर छोड़ देती है, तो दूसरी बिल्ली लेके आती है कि भाई यही परंपरा चली आ रही है, तो इसी परंपरा को हमें फॉलो करना है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है अंडर थिंकिंग, हम कम क्यों सोचते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे बताया कि किसी का अगर लाइफ में कोई आत्मविश्वास नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है अगर किसी व्यक्ति में, तो भी वो कम सोचेगा। वो सोचेगा कि अगर मैंने कोई बात का डिसीजन ले लिया और अगर उसके वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ गई तो हम क्या करेंगे, हमको उस प्रॉब्लम से कौन निकालेगा? तो अगर हमारे में आत्मविश्वास की कमी है तो हम जो है कोई भी डिसीजन लेने से डरते हैं, तो हमें जो दूसरे लोग कहते हैं हम उसी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मतलब आप अनुभवी हैं, आप कह रहे हैं माना ठीक ही है ऐसे। तो आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से भी जो है हमारे लाइफ में जो है कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। सेकंड जो पॉइंट है, कंफर्ट जोन। हमने हमारा एक कंफर्ट जोन जो है बना के रखा हुआ है, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम उस खोने को तैयार नहीं, हम केवल सोचते हैं केवल हमें मिलना चाहिए, हम देने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी जो होता है कंजूस आदमी गड्ढे में गिर जाता है, तो उसको दूसरा आदमी बोलता है हाथ दो हाथ दो, तो हाथ ही नहीं देता है क्योंकि इसके देने के संस्कार ही नहीं होते हैं। फिर उसका दूसरा आदमी बोलता है तो महाकंजूस है, बोलो हाथ लो हाथ लो, तो हाथ लो बोलता तुरंत हाथ पकड़ लेता है उसका। फिर तो हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, ऑलरेडी माइंडसेट हमारा प्रिपेयर है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होना चाहिए, कौन नया कौन क्यों करें हम। ऑलरेडी नदी जिस बहाव में बह रही है उसी बहाव में बहना ठीक है, बाहर आएंगे कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो किसी चीज का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों का सामना भी करना पड़ेगा, तो हम क्यों वो सारी बातों का सामना करें। इसलिए जैसे चल रहा है बस, जिसने कुछ कहा सत्वचन महाराज करके हमारे कंफर्ट जोन में रहकर हम उसी प्रकार से चलना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम। हमारे लाइफ में कोई एम ही नहीं है, हमको कुछ नया करना चाहिए या कुछ अलग सोचना चाहिए, तो हमारे लाइफ में अगर कोई एम नहीं है तो भी हम अपने हिसाब से पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे। किसी ने कुछ कहा उसी को मान लिया, जरूरत क्या है, सब चल रहा है ना, सब ठीक ही है, सब ऑटोमेटिक ही है, मतलब सब अच्छे से ओके चल रहा है। जैसे कहते हैं ना आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, तो हमें कुछ नया करने की इच्छा ही नहीं है, कुछ हमने हमारे लाइफ में लक्ष्य ही नहीं रखा है कि ऐसे करना चाहिए। जैसे बाबा के भी बन जाते हैं हम, तो हमारा लाइफ में कुछ लक्ष्य नहीं होता है, सेंटर पे जा रहे हैं मुरली सुन रहे, फिर जॉब पे जा रहे हैं, आ गए घर पे, फिर अमृत वाला उठे, फिर सेंटर पे गए, तो एक ही कंटिन्यू जो रूटीन लाइफ हो जाती है। कुछ एम नहीं है कि कुछ नया करना चाहिए, मधुबन में भी आते हैं जो यहाँ पे भी रहते हैं कि कुछ नया अलग करना चाहिए, तो कुछ लाइफ में अगर हमारा एम नहीं है तो हम कुछ नया करने की सोचते नहीं है, तो उसमें भी हमारी जो बुद्धि चलती नहीं है। उसके बाद में जैसे बताया कि तीन पॉइंट हो चुके हैं, पहला पॉइंट था, तीन हो गए, पहला था आत्मविश्वास, सेकेंड वे कंफर्ट जोन हो गया, थर्ड एम नहीं है, एम नहीं है हमारे लाइफ में, फिर फोर्थ पॉइंट जो है बाउंड्रीज। हमारे लाइफ में हमने कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना के रखी है जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कहते हैं नियम कायदे बना के रखे हैं, क्यों बनाए हमें पता नहीं, लेकिन हमें लगता कि हम इस बाउंड्रीज के अंदर है तो हम सेफ है, हम इस हिसाब से चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं तो ठीक है। एक मछुआरा होता है तो उसने अपने लाइफ में जीवन में नियम बना के रखा होता है कि जब वो मछली पकड़ने जाता है तो केवल तीन बार ही जाल फेंकता है, और तीन बार में जितनी भी मछलियां आ जाए उसी मछलियों को बेचकर वो अपना घर चलाता है। तो कई बार होता है कि बहुत सारी मछलियां आ जाती है, कई बार होता है कि मछलियां नहीं भी आती है, तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं उसके इस नियम से। तो उनके गाँव में एक बार एक साधु महाराज आते हैं, तो उसको घर वाले उसके जाके बताते हैं कि इसने ऐसे ऐसे नियम बनाया हुआ है, तो वो बोलते ठीक है मैं देखता हूँ, तो उससे बात करते हैं कि आपने ऐसा नियम क्यों बनाया हुआ है, तो कहता है कि नहीं ज़्यादा लालच करने की जरूरत नहीं ना, जितना भगवान दे दे जिसमें दे देवे उसमें खुश रहना चाहिए, तो मैं तीन बार कोशिश करता हूँ, तीन बार के बाद चौथी बार फिर भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ कि ठीक है आपको नहीं देना है तो नहीं दो ऐसे। तो महाराज बोलते हैं ठीक है, तो बोलते मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मछली पकड़ने के लिए। तो जब वो नाव में जाते हैं तो महाराज उसको धक्का दे देते पानी से, नाव में से, तो पानी में गिर जाता है, फिर वो तैरकर वापस से नाव में चढ़ता है, फिर दोबारा धक्का दे देते हैं उसे, फिर वो दोबारा तैरता है नाव में चढ़ता है, फिर दोबारा धक्का दे देते हैं, ऐसे कई बार होता है, आठ दस बार हो जाता है, तो आखिर में व्यक्ति थक जाता है, तो महाराज समझ जाते हैं अभी ये थक गया है, तो उसे ऊपर खींच लेते, भी धक्का नहीं मारते। उसने कहा कि भाई तुम्हारे लाइफ को तो नियम था ना कि तुम तीन ही बार कोई भी चीज़ ट्राई करते हो, उसके बाद नहीं ट्राई करते, तो चौथी बार क्यों तुमने ट्राई किया। तो उसने कहा भाई मेरी लाइफ पे आ गया था, मेरी जिंदगी का सवाल था, अगर मैं नहीं करता तो मैं मर जाता, और फिर मैं मर जाता तो फिर मेरे घर परिवार वालों का क्या होता। तो उसने कहा कि ये बात तुम उस समय क्यों नहीं सोचते हो कि जिस समय तुमने ये नियम बनाया या नियम फॉलो करते हो कि मुझे तीन ही बार केवल जाल डालना है और मछलियां पकड़नी है, तो उस समय अपने घर वालों का या परिवार वालों का क्यों नहीं सोचते हो। तो हमने हमारे लाइफ में कुछ ऐसे नियम बना के रखे होते हैं कि जो हमें पता नहीं हमने बनाया या किसी ने कहा, और हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, है ना, हमारा उस समय माइंड हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम उस बाउंड्री के अंदर है तो हम उस बाउंड्री के बाहर जाने का कभी सोचते नहीं है। तो ये हो गया कुछ बाउंड्रीज या नियम मर्यादाएं कायदे हमने बना के रखे जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम हमारा बल मानते हैं कि नहीं ये हमारा स्ट्रेंथ है, हम ये कर रहे हैं माना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ऐसे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है पांच, नहीं कुछ कुछ जरूरी है वो ठीक है, लेकिन कायदे में फायदा मिलता है वो बात सही है, लेकिन जैसे ये एग्जांपल दिया यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। कायदा तो बिल्कुल होना ही चाहिए हर एक की लाइफ में, कायदा लाइफ में होना ही चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। जैसे हम मिलिट्री वालों को देखते हैं, या कई लोग होते हैं कि जिनका नियम होता है कि सवेरे इतने बजे उठना है, मिलिट्री वाले होते हैं, मिलिट्री से रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ देखेंगे तो डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना अलग बात है, लेकिन ऐसे नियम कायदे बना के रखे जिसके वजह से हमको भी तकलीफ हो रही है और दूसरों को भी तकलीफ हो रही है, तो उसे नियम कायदे बनाने का कुछ मतलब नहीं है। तो हम उस बाउंड्री के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया बाउंड्रीज। उसके बाद नेक्स्ट जो है फियर। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का डर है कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे, ना जैसे कई बार बताया ना कि जैसे हम जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम सोचते हैं कि चले जाए, लेकिन मन में एक डर होता है कि नहीं सचमुच अगर हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और हमारा काम नहीं हुआ तो डर हमने मन में बना के रखा हुआ है। तो उस डर के वजह से भी हम उस नियम कायदे को तोड़ते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे, या सचमुच कुछ ऐसी बात हो जाती है, हम सोचते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग जो नियम कायदे बना के गए हैं जरूर उसमें कुछ न कुछ राज होगा। कई नियम कायदे हैं जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी है, माने भी जाते हैं। जैसे कोई अगर शरीर छोड़ता है तो आके उसके बाद स्नान वगैरह करते हैं तो पता है कि भाई जम्स वगैरह होते हैं इसलिए स्नान करते हैं। कोई ऐसे हवन वगैरह आदि करते हैं तो उससे जो एटमॉस्फेयर जो है शुद्ध होता है, तो हमें पता है वो नियम कायदे बने हैं या जैसे भी शांति के हिसाब से करते हैं एटमॉस्फेयर शुद्ध होता है, तो बात अलग है। लेकिन कई नियम कायदे हमें पता नहीं, लेकिन हम डर के मारे उसे तोड़ना नहीं चाहते। जैसे कहते हैं घर से बाहर निकलना तो हमेशा राइट पैर ही बाहर निकलना चाहिए, अगर लेफ्ट पैर नहीं निकलना चाहिए। तो हम कभी लेफ्ट पैर अगर गलती से हमारा निकल गया, जैसे आजकल लोग मोबाइल पर बात करते हैं तो पता नहीं होता कौन सा पैर निकाल रहा है, लेकिन फिर कुछ हो गया अगर तो सोचते अरे आज कौन सा पैर निकाला था मैंने। तो ऐसा कोई मन में अगर हमने डर बिठा के रखा हुआ है, तो वो अगर कोई हमने भय हमारे मन में है, किसी प्रकार का फियर है, तो भी हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। उसके बाद में है फैमिली सपोर्ट। जैसे बचपन से अगर किसी को हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिला है बचपन से, किसी बच्चे को, कोई बच्चा कुछ नया करना चाहता है और माँ बाप उसे मारते हैं या डांटते हैं हमेशा कि ये नहीं करो चुप बैठो, तो बच्चे का जो दिमाग जो है उसी प्रकार से हो जाता है, एकदम मन में डर बैठ जाता है उसके। हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिलने की वजह से वो कुछ नया सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं कुछ नया सोचूंगा या नया कुछ करूंगा तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, वो दोबारा डांटेंगे। उस प्रकार से ना वो कहानी सुनी होगी ना कि वो बकरी होती है, उसको कितना भी घास खिलाओ तो हमेशा खाती रहती है, तो राजा बोलता है इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। तो एक आदमी लेके जाता है, ठीक है मैं प्रूफ करूंगा कि इसका पेट भरा हुआ है। तो जैसे ही बकरी घास खाने जाती है तो बकरी उसके मुंह के ऊपर लकड़ी मारता है, ऐसे पूरा दिन करते रहता है। फिर नेक्स्ट डे जब उसके सामने घास रखते हैं तो बकरी घास की तरफ देखती भी नहीं है, उसके मन में डर बैठ गया बकरी के, मैं घास खाने जाऊंगी तो फिर मेरे मुंह पे लकड़ी पड़ेगी। तो ऐसे बच्चों का भी ऐसे हो जाता है, जो हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है घर में, माँ बाप उनको सप्रेस करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो उस प्रकार से वो सोचते हैं कि नया कुछ करेंगे तो फिर डांट मिलेगी, इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो। माँ बाप बोलते हैं हम तुम्हारे से ज्यादा अनुभवी है, हम बड़े हैं, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे चलो। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए जी? नेक्स्ट है कि संस्कार। अगर किसी का संस्कार ही ऐसे है, बाय डिफॉल्ट ही है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है अगर किसी का, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? कई बार हम किसी को देखते हैं तो बोलते हैं तो ठंडा आदमी है, बोलते हैं पता नहीं क्या है, इसका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन उसका प्रोसेसर जो है स्लो काम कर रहा है। जो बात हम एक मिनट में सोचते हैं हो सकता है 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद में भी सोचे। एक भाई है, उसको देखेंगे तो एकदम ऐसे ही शांत, कुछ मालूम ही नहीं कि भाई कुछ दिमाग में चल रहा है नहीं चल रहा है क्या बस चल अपने इसमें। लेकिन उसका क्वालिफिकेशन इतना है कि वो SDM के पास गया था, कुछ काम था उसको, तो SDM अपनी सीट से खड़ा हो गया। SDM ने उसको कहा कि सर प्लीज आप मेरी सीट पर बैठो पहले। उसने कहा कि नहीं नहीं आप, मेरे को सिर्फ छोटा सा काम है, आप साइन कर दो। नहीं नहीं, उसने कहा पहले आप मेरी सीट पर बैठो, उसके बाद में ही मैं साइन करूंगा, आप जहां बोलेंगे मैं साइन कर दूंगा, इतनी उसकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन उसको जब देखेंगे तो लगेगा कि पता नहीं है क्या पढ़ा लिखा भी है या नहीं करके, इस तरह से है इसे। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मतलब उसके संस्कार ही वैसे हैं। और ज्ञान में आने के बाद जो है हम और ही ठंडे हो जाते हैं, फिर बाबा कर रहा है ना, फिर सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा ने कहा ना तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, भाई जहां पे हमको जरूरी है सोचना, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कोई सिचुएशन है, तो उस पर जरूर सोचो। कुछ सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसके बाद बाबा के ऊपर छोड़ दो कि बाबा अब नहीं हो रहा है, आप उसके बाद सोचो करके। बाबा कहना त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होकर कोई भी कर्म करो। तो हमारे संस्कार ही अगर ऐसे हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचमुच करना चाहे, सोचे कि नहीं मुझे चेंज करना है मेरे संस्कार को, अगर उसे रियलाइज होता है, इस बात का रियलाइजेशन है, तो वो व्यक्ति अपने संस्कार को चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट था संस्कार। अगर किसी के संस्कार ही ऐसे तो क्या करेगा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई इंसिडेंट अगर हमारे लाइफ में होता है, जैसे बता ना कि किसी के साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है। हमारे पड़ोस में हमने देखा था कुछ लड़के थे काफी समय पहले, वो तैरने गए थे कहीं पे, तो उसमें तो तैरने किसी को भी ठीक से आता नहीं था, और वो तैरने गए तो उनके साथ का व्यक्ति लड़का जो था उनके सामने ही वो पानी में डूब गया, डूब के शरीर छोड़ दिया। तो उसमें से बाकी कई लोगों को तो जबरदस्त शॉक लगा था, लेकिन एक लड़के को इतना शॉक लगा था 10-12 साल वो टोटल जैसे डिप्रेशन में ही चले गया था, जो डिप्रेशन की अवस्था लगे, वो काम वगैरह सब कुछ करता था लेकिन जैसे उसकी बुद्धि चली नहीं रही है, जहां बोलो वहां बैठ जाएगा, ये करो उतना ही करेगा, आगे कुछ करना ही नहीं, अपना माइंड ही नहीं यूज कर सकता। तो इंसिडेंट अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसा कई बार हो जाता है तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं उसके बाद में, कि नहीं कुछ जरूरत नहीं सोचने की, पिछले बार ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, इस बार करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट इंसिडेंट। और कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट हो गए, हाँ ड्रामा उसमें संस्कार में आ गया ना, हमारे संस्कार ही हमारे ठंडे बना के होते तो हम बोलते जो ड्रामा में होगा वही होगा, तो हो गया उसमें। उसके बाद में अगर हम जो है हमारी कंपनी ऐसे है, हम किसी के संग में अगर ऐसे लोगों के संग में रहते हैं जिनका भी व्यवहार वैसा है, बाबा बोलते हैं ना संग तारे और कुसंग बोरे डुबोए, अगर हमारे जो कंपनी है उस कंपनी में सभी उसी प्रकार के लोग हैं कि सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो, तो हमारा भी माइंड सेट उसी प्रकार से हो जाता है ना, क्या चिंतन करने की क्या जरूरत है, मनन करने की क्या जरूरत है, बस मुरली सुन लिया, योग कर लिया और काफी है। तो हमारा अगर संग ही है, संग दोष है हमारे अंदर, या उसी प्रकार के संग में हम रह रहे हैं, तो फिर हम कुछ अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाते, जैसे चल रहा है उसी प्रकार से चलने दो। नेक्स्ट पॉइंट है ईगो, अगर हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है कि हम जो कर रहे हैं वही राइट है, हमें कुछ नया करने या नया सोचने की जरूरत नहीं है, तो भी हम जो है नया सोचते नहीं है। जैसे कई बार देखते ना कई बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कुछ कहो तो बोलते हैं हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हुए। तो मुझे याद है हम कंपनी में जॉब करते थे तो ऐसे बहुत से बूढ़े लोग होते थे जो कहते थे ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, तो मैं उनको कहता था कि चश्मा भी धूप में घूम के नहीं पहना हुआ ये। तो उनका माइंड ऑलरेडी सेट है कि भाई हम जो कह रहे हैं वही राइट है, हम जो कह रहे हैं वही आपने भी वही करना, नया कुछ करने की इच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बोर हो चुके ना। इसलिए 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को जो रिटायर किया जाता है इसलिए किया जाता है, इसलिए देखा जाए तो कि वो जो है खुद भी कुछ करेंगे नहीं और दूसरे को भी नहीं करने देंगे। ऐसा कई बार ऐसा नहीं भी होता है क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो लेक्चर्स होते थे उसमें जो ऑलरेडी लोग रिटायर हो चुके हैं और उसमें से भी जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनको एक एक लेक्चर का 5,000 7,000 पेमेंट देते थे खाली एक घंटे के लेक्चर का, और खास उनको बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए। तो वो कुछ सचमुच करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उनको बुलाया जाता है, बाकी जो सोच ही रहे कि कब रिटायर हो बस बैठे घर पे जाके, तो ऐसे लोगों को कौन बुलाएगा फिर। तो ये हो गया ईगो, हमारा ईगो भरा हुआ। जैसे हमने देखा हमारे सामने एग्जांपल है नोकिया कंपनी का, नोकिया कंपनी क्यों बंद हो गई, इतनी बड़ी कंपनी नंबर वन कंपनी किसी समय की, तो बंद क्यों हो गई, क्योंकि उनको ईगो था कि हम जो कह रहे हैं हम वही राइट है, हमारा ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है लोग लेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, आज कॉम्पिटिशन का जमाना है, लोग कुछ क्रिएटिविटी चाहते हैं, कुछ नए नवीनता चाहते हैं, अगर आप कुछ नवीनता करेंगे नहीं तो लोग जो है आपको पसंद नहीं करेंगे। तो नोकिया कंपनी जो बंद हो गई उसका मेन कारण जो यही है कि वो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सके, ढाल नहीं सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए कि हम कम क्यों सोचते हैं। उसके बाद जो उसके कम सोचने की वजह से जो है नुकसान क्या क्या होते हैं हमारे लाइफ में, कौन से नुकसान होते हैं? सबसे मेन पॉइंट जो है हमारा विकास नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम जितना जिस चीज को यूज करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे हमारा शरीर मजबूत होता है, तो हम जितना बुद्धि को यूज करेंगे तो हमारी बुद्धि मजबूत होगी, मनन चिंतन करेंगे तो बुद्धि मजबूत होती है। इसके पहले जैसे मोबाइल नहीं थे तो लोग बहुत सारे जो है चीजें ऐसे ही याद रख लेते थे, लोगों को नंबर भी पूछो तो याद रख लेते हैं, आज मुश्किल से किसी को 10-15-20 नंबर याद होंगे, कॉन्टेक्ट में देखो तो 1000 नंबर होते हैं। ज्यादा बता दिया, कॉन्टेक्ट में देखो तो 500-1000 नंबर होंगे, लेकिन याद किसका नंबर है, किसी का भी नंबर याद नहीं, क्योंकि मोबाइल आ गया ना, साधन मिल गया तो हम क्यों यूज करें। तो हमारी बुद्धि का विकास रुक जाता है, हम सोचते हैं जरूरत नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जहां पर जरूरी हो सके कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करो, जहां तक हो सके अपनी बुद्धि का उपयोग करो, तो बुद्धि हमारी एक्टिव बनी रहेगी ना, एक्टिव बनी रहेगी तो हम अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो बुद्धि का विकास रुक जाता है। सेकेंड पॉइंट है बुद्धि का विकास रुकने से जो हमारी सोच जो है लिमिटेड हो जाती है, हम एक ही प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं, अलग तरीके से कुछ नया करना है या कुछ करना चाहिए, या एक ही पॉइंट के कुछ अलग भी व्यू हो सकते हैं, एक ही काम अलग तरीके से भी किया जा सकता है, हम उस प्रकार से सोचते नहीं, हमारी सोच जो है लिमिटेड हो जाती है। सोच लिमिटेड हो जाने से फिर जो हमें प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती, थर्ड पॉइंट जो है प्राप्तियां नहीं होना, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, फिर हम दूसरों के साथ ईर्ष्या करते हैं कि देखो उनका मनन चिंतन कितना अच्छा है, वो कैसे सब करते हैं और हमको तो कुछ अनुभव ही नहीं होता, हमको तो कुछ पता ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम जो है हमारी बुद्धि इतनी लिमिटेड हो गई है, हम बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर रहे। किसी चीज को जैसे रख दिया जाए ना, कहते हैं ना मशीन अगर चलती रहेगी तो 10 साल चलेगी, और अगर बंद करके रख दो तो 5 साल में ही खराब हो जाएगी। तो हमारी बुद्धि भी वैसी है, जितना बुद्धि का उपयोग करेंगे बुद्धि उतनी एक्टिव बनी रहती है। तो थर्ड पॉइंट जो है, प्राप्तियां नहीं होती हमें कुछ, कि हमें कुछ अनुभव नहीं हो। ज्ञान में भी देखते ना वही वैसे चल रहे हैं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो प्राप्तियां नहीं होने के बाद में चौथा पॉइंट जो है, हमारा जीवन नीरस हो जाता है, कोई उमंग उत्साह नहीं रहता हमारे लाइफ में, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, चलना है इसलिए चल रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है, जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं होता, जीवन नीरस हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, उसका प्रभाव जो है हमारे इस शरीर पर भी पड़ता है, शारीरिक स्टेज जो है हमारी, जो शरीर के जो स्टेज है, शारीरिक अवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं उसी प्रकार से हमारा माइंड काम करता है। अगर हम खुशी से कोई काम करेंगे या नया उमंग उत्साह रहता है, तो हमारे शरीर में उस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो शरीर को मदद करते हैं। तो उस प्रकार से हमारा शरीर काम करता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जैसे आप सोचोगे वैसा बनोगे। तो अगर हमारी सोच ही पॉजिटिव नहीं है, सोच ही हमारी अच्छी नहीं है, तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? तो हमारी सोच का बहुत सारा, जैसे कहते हैं, प्रभाव जो है हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हमारी जो आंतरिक शक्तियां जो है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। शारीरिक शक्ति तो कम होती है शरीर की, लेकिन आंतरिक जो शक्तियां हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम रिजिड हो जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। क्योंकि बहुत समय से हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ प्राप्तियां नहीं हो रही है, तो हम सोचते हैं कि भाई अभी कुछ करना नहीं है, हम जो माइंड है हमारा, हमने जो सेट करके रखा है वही सही है। तो हम खुद के साथ भी कठोर हो जाते हैं और दूसरों के साथ भी कठोर हो जाते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही राइट है, हमें कुछ नया करना नहीं है। तो ये पॉइंट हो गए कुछ 6 पॉइंट जो है उससे नुकसान के। आप और चिंतन करेंगे तो और भी पॉइंट निकल सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट है कि हम अगर कम सोचते हैं तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे अभी हम बाहर कैसे निकले। सचमुच अगर किसी को लगता है तो मेन सबसे बड़ा बात है, पहली मुख्य बात है, रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारे अंदर ये कमी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेल्फ टॉक करना है, खुद के साथ खुद ही बातें करनी है। जब हम दूसरों को देखते हैं कि उनमें ये विशेषताएं हैं, उनमें ये गुण हैं, हमारे अंदर ये क्यों नहीं है, तो हमें खुद से बात करना चाहिए। सेल्फ टॉक जितना हम करेंगे तो हमें हमारी कमजोरी मालूम पड़ती जाएगी, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जैसे कई अच्छे स्पीकर्स होते हैं तो अपने हर सेशन के बाद में, क्लास के बाद में खुद ही अपना क्लास सुनते हैं वो, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हमने कहाँ पे गलती की है। तो हमें अपने आप से सेल्फ टॉक करना जरूरी है कि हम सेल्फ टॉक करेंगे तो हमें हमारी गलतियां मालूम पड़ेगी ना। उसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सुनता हूँ मैं हमें एटलीस्ट कमी कमजोरी मालूम पड़ती है। मैं इसलिए सुनता हूँ कि मेरी स्पीड कैसी रही, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमें हमारी कमी कमजोरी मालूम पड़ती है, इसलिए सेल्फ टॉक करना जरूरी है। जब हम सेल्फ टॉक करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है हमने किस जगह पे गलती की और आगे के लिए हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं, और हम अपने आप को खुद ही शाबाशी दे सकते हैं। दूसरों के अप्रिसिएशन के ऊपर हम डिपेंड न रहे, खुद ही अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि नहीं वेल डन, बहुत अच्छा किया। जरूरी नहीं कोई हमारी पीठ थपथपा के जाए ना। तो सेल्फ टॉक करने से ये फायदे होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है उसे हमें बड़ा करना चाहिए। लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल बड़ा करना है, मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक में अकाउंट खोल लो या व्हाट्सएप पे दोस्त बनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। अच्छे लोगों के साथ में, मतलब अच्छी कंपनी में लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करना चाहिए। उस समय पहले एक भाई आया था 2-3 दिन पहले, तो बता रहा था कि मेरा मोबाइल और लैपटॉप चोरी हो गया। तो फिर किसने चोरी कर लिया? तो बोला नहीं, मेरा ग्रुप बना हुआ है, ऐसे ऐसे काफी घुमा फिरा के बातें कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, पहले आप क्लियर बताओ कि चोरी किसने की, आप उनको कैसे जानते हैं? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उनको, देखा नहीं तो उन्होंने चोरी कैसे कर ली आपके साथ में? तो बता नहीं रहा था वो। फिर आखिर में उसने बताया कि मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है 1 साल से, और मैं लोगों को मुरलियां भेजता हूँ, और उनके साथ में मेरा कॉन्टेक्ट है, उन्होंने मुझे ऐसे यहाँ पर बुलाया, उसको लिमका में कुछ नशे की कोई चीज पिला दी उसको, वो 2 दिन तक सोया पड़ा था, वो उसका सारा लैपटॉप मोबाइल वगैरह लेके भाग गए वो। अभी वो बोलता कैमरे में देखो, जब उसने उनको देखा ही नहीं, उसको याद भी नहीं, एक ही बार देखा 5 मिनट के लिए, और बोलता कैमरे में देखो, तो कैसे पहचानेगा उसको? तो ऐसे फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना चाहिए जो हमें धोखा दे। अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो। तो कहते ना कि अगर आप किसी एक गांव के व्यक्ति को ले ले और एक शहर के व्यक्ति को ले ले, तो दोनों के अगर एजुकेशन दोनों का सेम भी हो, लेकिन दोनों का जो माइंड लेवल जो है बहुत फर्क पड़ता है। उसमें ब्रॉड माइंडेड एक होता है, एक नैरो माइंडेड होता है। क्योंकि आप जितने लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, अगर आप में कुछ सीखने की इच्छा हो। तो हमको जो सेकेंड पॉइंट जैसे बताया, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है या हमारा संघ जो है अच्छा बनाना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए जो अच्छे, जैसे कहते हैं पुरुषार्थी हो, या जिनके लाइफ में सब अच्छा है, जिनके लाइफ में पॉजिटिविटी ज्यादा है, ऐसे लाइफ लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है क्रिएटिविटी, कुछ नवीनता करनी चाहिए। जैसे कई लोगों को में कोई स्किल होती है तो वो स्किल को बढ़ाते हैं या कुछ नया सोचते हैं कि हमारे में थोड़े से, कोई बाथरूम में ही गाना गाता है तो ये सोच सकता है कि मैं बाथरूम से बाहर, अगर सचमुच उसका आवाज अच्छा है तो वो सोच सकता है कि मैं बाथरूम से बाहर भी कैसे गाना गा सकता हूँ या नहीं गा सकता हूँ। तो या जैसे बताते हैं कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप ऑफिस में जाते हैं या घर में जाते हैं, तो सेम रास्ता रोज लेने के बजाय कुछ नया रास्ता भी अप्लाई करना चाहिए, किसी नए रास्ते से भी जाने का ट्राई करना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम नया रास्ते से जाए और रास्ता ही भूल जाए। एक व्यक्ति जो है बिल्ली पालता है अपने घर में, तो बिल्ली बड़ी हो जाती है तो बहुत तंग करती है उसको, तो वो सोचता है इसको जाके दूर कहीं छोड़ के आना चाहिए। तो जो लेके जाता है बिल्ली को वो दूर कहीं छोड़ देता है, तो जब वो घर पे आता है देखता तो बिल्ली उसके दरवाजे पे बैठी होती है, उसके पहले पहुंच जाती है। तो फिर थोड़े दिन के बाद और लेके जाता है, और दूर लेके जाता है बिल्ली को, फिर और दूर छोड़ के आता है, फिर वापिस जब घर पे आता है तो देखता है फिर बिल्ली दोबारा दरवाजे पे बैठी हुई है, बोलता अभी तो और कुछ करना पड़ेगा। तीसरी बार और दूर जाता है, तो और दूर जाता है तो फिर रास्ता ही भूल जाता है। तो अपनी बीबी को घर में फोन करके बोलता है बिल्ली पहुंच गई क्या घर पे, तो बोलती हाँ पहुंच गई, बोलता उसको भेजो मैं रास्ता भूल गया हूं, बोलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर कौन सी क्रिएटिविटी करनी चाहिए वो भी हमें सोचना चाहिए ना। अगर बंदर सोचे कि जैसे मछली देखो कितना दिन भर पानी में तैरती है, मुझे भी अच्छा मछली के जैसा बनना चाहिए, तो बंदर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अगर हाथी सोचे कि मैं बंदर के जैसे पेड़ पे चढ़ूं और उछल कूद करूं तो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कहां पर कौन सी क्रिएटिविटी करनी चाहिए, हमारी योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, उसको देखकर ही वो लाइफ चीजें हमारी लाइफ में लानी चाहिए। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, और कौन सी बातें हो सकती है? कम सोचने से बाहर आने के लिए हमें हमारा सबसे मेन पॉइंट बताया था, पहला पॉइंट आत्मविश्वास, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आत्मविश्वास। एक क्रिएटिविटी में आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग भी, कि हमें कुछ नवीनता करनी है, कुछ अलग चीजें करनी है। हाँ, तो सेकंड इसमें आ गया, फिर अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना एक, हाँ एक वो भी आ सकता है, उसमें अलग से भी ले सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। माना हम जैसे कई लोग होते हैं ना, क्रॉसवर्ड वगैरह सॉल्व करते हैं, या एक ही इसमें जैसे बताया कि लोग बैठ के एक ही बात के ऊपर 10 लोग सोचते हैं कि अगर हमारे सामने ये समस्या आ गई, जैसे हमने यहाँ 6 थिंकिंग हैट एक्टिविटी की थी या दूसरी एक्टिविटी, कि एक ही समस्या अगर हमारे सामने आ गई तो 4 लोग या 10 लोग मिलकर किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमें एक दूसरे के जो एडवाइस होते हैं या विचार होते हैं उसमें हमारा लेन देन होता है एक दूसरे के साथ में, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे विचार सही थे या उनके विचार सही थे या किस में क्या कमजोरी हो गई। तो ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट सबसे मेन जो है, हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना है। कैसे हम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो उसके लिए जैसे बताया कि अच्छे लोगों का संग करें, कुछ किताबें वगैरह हैं, नई किताबें मोटिवेशनल स्पीकर्स के कुछ लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो सुने, कुछ किताबें वगैरह पढ़ें, तो उससे भी जो है हमारा जो माइंड जो है कम थिंकिंग वाला, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारी जो कम थिंकिंग की आदत जो है उसे हम बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि आदत को बदलना ईजी होता है, जो आदत हमने डाली है वो आदत तोड़ भी सकते हैं। स्वभाव अलग चीज है, आदत अलग चीज है, लेकिन हमको आदत हो जाती है। माइंड जो है हमेशा जो है कम रेजिस्टेंस वाला मार्ग अचीव करना चाहता है, कि कोई जरूरत नहीं है, क्यों मेहनत करें। किसी को कहे कि अगर मुरली पढ़े दिन में 4 बार, तो वो सोचेगा 2 बार ही पढ़ो, 2 बार तो ठीक है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करेगा तो सोचेगा कि एक ही बार पढ़ लो तो वही काफी है, क्योंकि माइंड रेडी नहीं होता कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो है हमें उस तरह से करना चाहिए, हमें कुछ नई चीजें करनी चाहिए, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिससे हमारा हम आत्मविश्वास बढ़ा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो हमने सोचे। राइटिंग क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीजें आती है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है क्रिएटिविटी के लिए, कि राइटिंग करना है, जैसे मैंने कहा ना कि नई स्किल कुछ सीखना वगैरह है, कुछ म्यूजिक वगैरह कई लोग सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें क्रिएटिविटी के अंदर आ सकती है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है क्रिएटिविटी की, वो सब चीजें हम करेंगे। जैसे कई लोगों को पढ़ने की आदत होती है तो पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने से भी जो हमारे माइंड का प्रोग्रेस अच्छा होता है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के विचार हमें समझ में आते हैं कि दूसरे लोगों के क्या भाव है, क्या विचार है, तो उससे भी हमारा माइंड जो है चेंज होता है। खुले वातावरण में, हाँ खुले वातावरण में जा सकते हैं, प्रकृति के नजदीक में जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से होमवर्क लेके जाए यहाँ से। हाँ, एक्सरसाइज, जो मेन बात भूल गया मैं, मेन बात है एक्सरसाइज, जिसे करते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगासन वगैरह करते हैं, तो वो इसके लिए होता है, जैसे बताया कि हमारे बॉडी में जो है केमिकल जो है रिलीज होते हैं, तो हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाते हैं। जैसे कई बार देखते हैं कि अगर जैसे लोग जिम में वगैरह जाते हैं, कई बार उनका मूड नहीं होता है जिम में जाने का कि आज नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो जिम जाते हैं और 5-10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद अपने आप उनका मूड जो है रिफ्रेश हो जाता है। तो हमारे अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई वॉकिंग वगैरह करने जाते हैं, स्विमिंग वगैरह करने जाते हैं, तो उससे भी हमारा माइंड जो है रिफ्रेश होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम करेंगे तो हम जो है अंडर थिंकिंग से, हाँ, कोई भी बात हमारे लाइफ में हम कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से जानकर पहचानकर सोच समझ कर ही करना चाहिए, है ना। सत्वचन महाराज करके उसे लाइफ में फॉलो नहीं करना चाहिए। ओम शांति।